नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आपके सामने अपने नए पॉडकास्ट के साथ उपस्थित हूँ। आज का पॉडकास्ट मेरे पास हार्टफुलनेस जोधपुर टीम के तरफ से आया हुआ है और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा स्टोरी उनकी तरफ से हम लोगों को मिली है। हाँ, उनकी एक रिक्वेस्ट भी होती है। ये जो आज हम करने जा रहे हैं, शायद इससे पहले हमने किसी पॉडकास्ट के साथ इस तरीके का काम नहीं किया है, तो कृपया कहानी पढ़ने से पहले कुछ पलों के लिए धीरे से अपनी आँखें बंद कर लें और महसूस कीजिए कि आपका दिल प्रेम से भर गया है। कुछ पल थोड़ा और प्रेम बढ़ा है। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं छोटी गौरैया का विश्वास, एक गौरैया चिड़िया जिसका विश्वास। एक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आगमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। ऐसे में एक पेड़ पर एक गौरैया अपने चार बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला ज़मीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें उस अनहोनी दुर्घटना से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध के शुरुआत से ही पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए थे। उस गौरैया ने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार से कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचा लो, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात तो सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है, आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पे किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने साधारण व्यक्ति की तरह उस गौरैया को बताना जारी रखा, जिसका आशय था कि इस बारे में वे कुछ नहीं कर सकते। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे हैं और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति सहित स्वयं को, परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। बस भगवान ने उस गौरैया से इतना ही कहा, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फैलाया और फिर अपने घोंसले की तरफ वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा हो गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंके, क्यों? क्योंकि कृष्ण ने तो युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी ना। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वही सबसे अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मुझे आज्ञा दे भगवान। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले में जो घंटी लटकी थी उससे जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ी। अर्जुन ने देखा तो उसकी हंसी ही नहीं रुक पाई कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत किया। उनकी इस प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उसे धनुष वापस दिया और कहा, कोई अब और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं, लेकिन केशव आपने हाथी पर तीर क्यों चलाया? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उस घोंसले को जो कि एक पेड़ पर था उसे गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को अनदेखा करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जाने गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां पर अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान शरीर और मृत हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी की पर बांधी जाती है उसे देखकर विचार करने लगे। फिर बोले, अर्जुन क्या तुम मेरे लिए यह घंटी उठाकर एक तरफ रख दोगे? निर्देश तो बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो उस हाथी के गर्दन पे थी जिस पर मैंने तीर मारा था। अब अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इससे उठाया, उसकी जैसे दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 चार युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से बाहर निकले और बाहर निकलकर माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें श्री कृष्ण, अर्जुन ने कहा, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। सच है, आपका विश्वास कितना दृढ़ है ये बहुत मायने रखता है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन की जो टीम है, HFN स्टोरी टीम जोधपुर, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतनी अच्छी पॉडकास्टिंग इन्होंने स्टोरी के लिए दी है। और मैं आप सबका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज प्रेम भरे दिल से इस कहानी को सुना। आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं और बड़े धैर्य से मेरी कहानियों को सुनते हैं। मैं अंजलि आरटी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक बार फिर नए स्टोरी नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।